पृष्ठ संख्या 4। चीन किसी भी प्रकार के ज्ञान और सामंतवाद के खिलाफ था, क्योंकि इसके दृष्टि में यह दोनों सामाजिक विकास में बाधक हैं और मानव समाज को भ्रष्ट करते हैं। मंगतज, जिसे चीन के बाहर के लोग मैनसियस के नाम से जानते हैं, ने परोपकारिता की विचारधारा का प्रतिपादन किया। उसके दृष्टि में सभी मानव प्रकृति से अच्छे होते हैं तथा इसी अच्छाई को आगे विकसित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मंगतज का यह भी मानना था कि वही व्यक्ति शासक बनने का अधिकारी है जिसे आम जनता का समर्थन प्राप्त हो। यह आत्मनिर्भरता पर ही जोर देते थे। बौद्ध धर्म का प्रसार चीन में पहले ईस्वी में हान वंश के शासनकाल में हुआ। शायद चीन में इसे लाने का श्रेय उन व्यापारियों व यात्रियों को जाता है जो प्रख्यात रेशम मार्ग सिल्क रूट से होकर आते थे। बौद्ध धर्म नैतिकता, मानव कल्याण तथा दुख निरोध में विश्वास रखता था, जिनके द्वारा सभी राजनैतिक व सामाजिक समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। बौद्ध धर्म को राजकीय सहायता मिलने के कारण चीन में कई बौद्ध मठों, बैंकिंग संस्थाओं तथा सरायों का निर्माण किया गया। 221 ईस्वी से लेकर 907 ईस्वी तक चीन में तीन राज्यों का युग था, थ्री किंगडम ईरा। पश्चिमी छीन वंश, पूर्वी छीन वंश, दक्षिणी वंशों का युग, उत्तरी वंशों का युग, सुई वंश तथा थांग वंश का शासन था। इसी युग में कृषक आंदोलनों की शुरुआत हुई थी, जिसके कारण वंशानुगत भू संपत्ति कुलीन वर्गों, हेरिडेटरी लैंड एरिस्टोक्रेसी के स्थान पर उन भू स्वामी वर्गों लैंडलॉर्ड्स का प्रभाव बढ़ता गया जो विशिष्ट परिवारों के सदस्य थे। नए भू स्वामी अपनी राजनैतिक और पुश्तैनी शक्तियों व अधिकारों का उपयोग राजकीय इच्छा पर नहीं अपितु समाज में अपनी परंपरागत स्थिति के अनुसार करते थे। इनके पास विशाल कृषि प्रधान भूमि होती थी तथा यह कृषकों पर अपना पूरा नियंत्रण बनाए रखते थे। कृषक वर्ग करों के लगातार बढ़ते हुए बोझ से बचने के लिए भू स्वामियों के संरक्षण में आ जाते थे। इसी युग में राजनीतिक समस्याओं तथा विदेशी आक्रमण के कारण चीन की विभिन्न जातियों ने प्रवासन की प्रक्रिया आरंभ कर दी थी और कई क्षेत्रों में जनसंख्या का वितरण हो रहा था। पृष्ठ संख्या 5। 907 ईस्वी से लेकर 1368 ईस्वी तक चीन में पांच वंशों तथा 10 राज्यों का शासन हुआ, जिसके पश्चात सुंग, छिन, दक्षिणी सुंग और अंत में उनका मंगोलों के युवन वंश के अधीन एकीकरण हो गया। इस युग में भी कृषकों के लगातार आंदोलनों के कारण परीक्षा प्रणाली की शुरुआत की गई और वंशानुगत स्वामी के स्थान पर अधिकारी भू स्वामी ब्यूरोक्रेट लैंडलॉर्ड की नियुक्ति की गई। यह नए अधिकारी भू स्वामी अपने पद के लिए परीक्षा प्रणाली पर आश्रित होते थे अथवा शैक्षणिक डिग्री को खरीद कर या राजकीय सहायता के द्वारा पदों को प्राप्त करते थे। नौ कन्फ्यूशियसवाद, नियो कन्फ्यूशियनिज्म का उदय 11वीं शताब्दी में हुआ और इसमें कन्फ्यूशियस के विचारों और नैतिक मूल्यों के साथ साथ बौद्ध धर्म और ताओवाद के तत्व भी शामिल थे। 13वीं शताब्दी में मंगोल आक्रमणों के परिणाम स्वरूप मंगोल युवन वंश की स्थापना हुई, जिसके शासकों ने लामावाद बौद्ध धर्म के राजकीय सहायता प्रदान की। हालांकि संपूर्ण चीन में नव कन्फ्यूशियसवाद का ही अधिक प्रभाव बना रहा। धीरे धीरे ईसाई धर्म तथा इस्लाम का प्रभाव भी चीन पर पड़ने लगा, लेकिन उनका प्रभाव क्षेत्र बहुत ही सीमित था। उत्तर मंगोल वंश व पूर्व मंगोल वंश में मूलभूत रूप से दो प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती थी। पहला, नए राजनीतिक ढांचे का समाज पर प्रभाव पड़ा, जिसके कारण राजनीतिक शक्तियां सांस्कृतिक मूल्यों को भी धीरे धीरे बदलती चली गई। दूसरा, मिंग तथा छिंग 1644 से 1911 साम्राज्य मूलभूत रूप से एक दूसरे से अलग थे। मिंग चीन के अंतिम परंपरागत वंश था, जबकि छिंग मंगोल द्वारा विजित मांचू साम्राज्य था। पृष्ठ संख्या 6। भूस्वामियों के बढ़ते हुए शोषण के कारण चीन में एक बार फिर कृषक विद्रोह शुरू हुए, जिनके परिणाम स्वरूप मंगोल साम्राज्य का पतन हो गया। सफेद कमल, व्हाइट लोटस जैसी कई गुप्त संस्थाओं ने कृषकों को अपना सदस्य बनाने के लिए उन्हें परंपरागत विषमताओं से मुक्ति दिलवाने का वायदा किया। 14वीं शताब्दी तक चीन में यह विश्वास किया जाने लगा कि मिंगवांग अर्थात उज्ज्वलता के राजकुमार, प्रिंस ऑफ ब्राइटनेस के प्रकट होने से ही विश्व का बचना संभव होगा। इस सिद्धांत में मैत्रेय बुद्ध, मैनिकायवाद की विचारधारा तथा विद्रोहियों की सुंग वंश को पुनः स्थापित करने की मांग भी सम्मिलित थी। शायद यही कारण है कि मिंग वंश की स्थापना का श्रेय एक विद्रोही गुट के किसान सदस्य को दिया जाता है, किंतु नए साम्राज्य की स्थापना के बाद कृषक आंदोलनों के उग्र विचारों को न अपनाकर रूढ़िवादी कन्फ्यूशियसवाद को अपनाया गया। इस प्रकार सत्ता में आने के बाद सामाजिक क्रांति को सांस्कृतिक रूढ़िवादिता में परिवर्तित कर दिया गया। चीनी समाज पर शाही शासन स्थापित करने के लिए समाज के सभी वर्गों पर कर नियमों को लागू किया गया था। शासन करने का एकाधिकार केवल राज्य परिवार के पास थे। राज्य परिवार के सदस्यों को वंशानुगत पदवियां व सरकारी भत्ते प्रदान किए जाते थे, लेकिन उन्हें कोई सरकारी पद नहीं दिया जाता था। कृषक विद्रोहों के दौरान बनाई गई कृषक सेना के अधिकारियों को कुलीन वंशानुगत वर्ग हेरिडेटरी नोबिलिटी में सम्मिलित किया गया तथा राज्य परिवार के साथ उनके वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए। उन्हें सैन्य अधिकारी बनाकर राजधानी में रखा जाता था। सैन्य टुकड़ियों को कई भागों में विभाजित करके संपूर्ण साम्राज्य में तैनात कर दिया जाता था। वह सैन्य प्रशासन गोलों की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। पृष्ठ संख्या 7। शासक और प्रशासकीय वर्ग के बाद संभ्रांत वर्ग जेंट्री का स्थान आता था, जिसका अस्तित्व सरकारी परीक्षा पास करने पर आधारित था। इस प्रणाली का विकास 11वीं शताब्दी में किया गया तथा यह परीक्षा 3 वर्षों में एक बार ली जाती थी। इसमें बैठने का अधिकार केवल उन्हीं लोगों को प्राप्त था जो कन्फ्यूशियस शास्त्रों में निपुण हो। जिस परीक्षार्थी ने जिले व प्रांतीय स्तर की परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर लिया हो, उसी को केंद्रीय सरकार में अधिकारी पद पर नियुक्त किया जाता था। सरकारी पदों पर अच्छे अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए परीक्षा व्यवस्था को कर नियमों के अंतर्गत स्थापित किया गया था। अधिकारी के सरकारी कार्यों की कड़ी जांच पड़ताल की जाती थी तथा उनका स्थानांतरण कभी भी उसके अपने क्षेत्र में नहीं किया जाता था। एक निश्चित अवधि के बाद उसका स्थानांतरण होना अनिवार्य था तथा कार्य व्यवहार का पूरा हिसाब किताब रखा जाता था। यह पद वंशानुगत नहीं होता था। CU के अनुसार परीक्षा प्रणाली सामाजिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक नया मार्ग था, जिसके द्वारा भाई भतीजावाद, निपोटिज्म तथा पक्षपात, फेवरिज्म को कम किया जा सकता था। यह इस बात का प्रतीक भी था कि चीन का सामाजिक ढांचा अत्यंत लचीला था तथा समाज तथा राजनीति में पदाधिकारियों का अपना अलग अस्तित्व व विशेषाधिकार था। पदाधिकारी कन्फ्यूशियसवाद के नैतिक आचारों और राजनीतिक विचारों के कट्टर समर्थक थे। परीक्षा प्रणाली को आरंभ करने का महत्वपूर्ण उद्देश्य शासक वर्ग को निरंतर प्रतिभावान बनाए रखना, प्रशासकीय अधिकारों की आपूर्ति करना तथा किसी भी प्रकार के विपक्षी विचारों के विकास को रोकना था। इस प्रकार कुलीन वर्ग सेना का निर्माण करता था तथा संभ्रांत वर्ग से पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। वेशभूषा व जीवनचर्या के संदर्भ में समाज पर वृहत कानून लागू किए गए थे। कर तथा श्रम नियम केवल उच्च वर्गों के लाभ के लिए बनाए जाते थे। आम जनता का विभाजन सैनिकों, कलाकारों, शिल्पकारों, कृषकों व श्रमिकों के रूप में किया गया था। पृष्ठ संख्या 8। चीन का शासक सर्वशक्तिमान था, क्योंकि उसके पास सैन्य तथा संघीय दोनों ही शक्तियां विद्यमान थी। कन्फ्यूशियन सिद्धांत में शासक को संपूर्ण विश्व में जनता का शासक माना जाता था, अर्थात उसका कार्य विश्वव्यापी व्यवस्था को बनाए रखना था। किसी विदेशी आक्रमण या विदेशी व्यक्ति के शासक बन जाने से भी इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता था, क्योंकि प्रत्येक शासक को कन्फ्यूशियस के सिद्धांतों के आधार पर ही शासन करना पड़ता था। ऐसा ही 13वीं शताब्दी में मंगोल तथा 17वीं शताब्दी में मांचू शासकों ने किया था। सम्राट को न केवल साम्राज्य के सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन में बड़े उपद्रवों के लिए, बल्कि बाढ़, सूखा व भूकंप जैसे प्राकृतिक प्रकोपों एवं आपदाओं के लिए भी उत्तरदायी ठहराया जाता था। इस प्रकार भयंकर अव्यवस्थिता ग्रेट डिसऑर्डर में कन्फ्यूशियन परंपराओं के अनुसार सम्राट के विरुद्ध विद्रोह को वास्तव में वैध माना जाता था। एक सफलतापूर्ण विद्रोह को इस बात का प्रमाण माना जाता था कि ब्रह्मांडिक शक्ति द्वारा राजवंश को दिए गए शासन करने के अपने दिव्य आदेश हिवेनली मैंडेट को वापस ले लिया गया था। चीन के सम्राट वास्तविक शासक होते थे, प्रतीक मात्र नहीं। संपूर्ण भूमि व प्रशासन का कार्य प्रभार सम्राट का होता था। अधिकारियों की नियुक्ति, उनका हस्तांतरण या उन्हें पदच्युत करने का अधिकार भी केवल शासक का होता था। साम्राज्य की किसी भी गतिविधि में वह व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप कर सकता था। इतने अधिक अधिकार तथा उनका सही संचालन सम्राट की व्यक्तिगत योग्यता एवं अभिलाषाओं पर निर्भर करता था। नागरिक प्रशासन को 6 विभागों में बांटा गया था। प्रत्येक विभाग एक मंत्री के नियंत्रण में होता था। संघीय सेवा के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति प्रशासनिक नियुक्ति विभाग बोर्ड ऑफ सिविल अपॉइंटमेंट्स द्वारा की जाती थी। राजस्व विभाग बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का कार्य करों को एकत्रित करना, जनगणना करवाना, वित्तीय मामलों का हिसाब किताब रखना तथा राज्य संस्थाओं की देखभाल करना था। आचार विभाग बोर्ड ऑफ रिट्स का कार्य विदेशियों की देखभाल करना तथा विशेष मौकों और धार्मिक रीतियों का कर्तव्य निर्वाह करना था। युद्ध विभाग बोर्ड ऑफ वार केवल सेना से संबंधित कार्यों को देखता था। न्याय विभाग बोर्ड ऑफ जस्टिस कानून संहिता, न्यायालयों की देखरेख तथा दोषियों को पकड़ने व दंड दिलवाने का कार्य देखता था। सार्वजनिक कार्य विभाग बोर्ड ऑफ पब्लिक वर्क्स, जल नियंत्रण, सिंचाई व्यवस्था, भवन निर्माण व सड़क निर्माण तथा मानव शक्ति को संचालित करने का काम करता था।